किस चिड़िया का नाम है स्त्री विमर्श? बम पिलाट है उसके जूते, भूमंडलीकरण और स्त्री। हम एक युद्धकातर हिंसा विह्वल समय के नागरिक है। आप कहेंगे कि नागरिकता तो स्थान सापेक्ष होती है, समय की नागरिकता क्या बला है? भूमंडलीकरण ने विश्वग्राम की जो अवधारणा सामने रखी है उससे स्थान के कंधे काल का बैताल विराज गया है। स्थानीयताएं, स्थानीय संस्कृतियां तेजी से विलुप्त हो रही हैं, प्रतिरोध में सिर पटकती हुई। जैसे बुझने के पहले दिया जोर से भभकता है, जरूरत से ज़्यादा देसी और मटियाले, जरूरत से ज़्यादा स्थानीय, धार्मिक और रूढ़िबद्ध भी लोग हो ही रहे हैं। इसका स्पष्ट संकेत है विस्फोट, आतंकवादी विस्फोट, सूचना विस्फोट। अपने समय का तो सिग्नेचर ट्यून है विस्फोट, कायर और अंधे विस्फोट। सूचना सिर्फ पटाखा है और संस्कृति भी बम की तरह नए देशों के सिर फूटने को तैयार। सूचना जो ज्ञान था विवेक बंद थिराए नहीं, धूल धुआं अंगारा बनकर बिखर जाए। विस्फोट ही होगी और संस्कृति अप और उप के उपसर्ग धरे बिना रहेगी भी कैसे, यदि उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व न होकर आत्मसातीकरण हो जाएगा। सोचिए क्या होगा जब भारत जैसे रंग बिरंगे देश में भी हम एक ही तरह का मैकडोनाल्डी खाना खाते हुए, एक ही तरह के कपड़ों में सूटेड बूटेड, एक ही तरह के त्यौहार नया साल आदि मनाते, एक ही तरह की भाषा इंग्लिश बोलते हुए एक ही रास्ते पर अमेरिका की ओर कवायद करते मरियल सिपाही नजर आएंगे। भूमंडलीकरण, कहिए भूमंडलीकरण के सिपाही विचारों का, श्रम का, रिवायतों का और पूंजी का विश्वायन अपने आप में अमंगलकारी नहीं, इतिहास के इस चरण में यह होना ही था। अमंगलकारी है इसकी एक ध्रुवीय, एकांगी, एक पक्षीय प्रकृति। सौंदर्य शास्त्र हो या नीति शास्त्र, काम शास्त्र, काव्य शास्त्र या दर्शन शास्त्र, सम्यक संतुलित सर्वतोमुखी पल्लवन ही सबका केंद्रीय सूत्र है। एकांगिता विकलांगता का पर्याय है, एक पक्षीयता पक्षाघात। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, यह टालू और चालू किस्म की असंभव यूटोपियाई रोमानियत का नारा हो, ऐसी बात नहीं। यह एक सदिच्छा है और यदि इच्छा के साथ भी सत न लगा तो इच्छा किस काम की। जन्नत की हकीकत, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां चारों तरफ स्त्रियां हंसती हुई दिखाई देती हैं, गली में, चौराहों पर, अखबारी विज्ञापनों में और टीवी पर। लेकिन कुछ चेहरे हैं जो कहीं भी दिखाई नहीं देते क्योंकि वे चेहरे नहीं, हाथ हैं, लगातार खटते हुए हाथ। अपने स्त्रीवादी मातृत्व के दो अनुभव साझा करना चाहूंगी। जब मुझे लगा कि हाँ, भविष्य के लिए दो प्रतिबद्ध स्त्रीवादी तैयार करने में मेरे भी स्त्रीवाद की कुछ भूमिका रही है, लगातार की बातचीत का बच्चों के मस्तिष्क पर भी कितना असर होता है इसका प्रमाण ये दो छोटी घटनाएं। 4-4.5 साल का उन्नयन था, अभी छोटे छोटे शब्द जोड़कर वाक्य बनाना और पढ़ना सीख ही रहा था। दिल्ली में हर जगह मेट्रो की पटरियां बिछ रही थी, दिल्ली हाट पर खड़े खड़े हम स्कूल बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसकी आंखें सामने के बोर्ड पर से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक वह मेरा आंचल खींचता हुआ बोला, माँ देखो लिखा है मैन एट वर्क, लेकिन वहाँ काम तो औरतें भी कर रही हैं। दूसरी घटना उत्कर्ष के बचपन की है। हम उसके दादाजी के पास थे उन दिनों, घर के पिछवाड़े भिंडी के पौधे लगे थे, एक लंबी सी भिंडी आसमान की ओर उठी हुई थी। कुछ दिन पहले ही मैंने उसे हिंदी का एक मुहावरा सिखाया था, उंगली उठाना यानी दोष मढ़ना। सब्जियों के अंग्रेजी नाम भी वह स्कूल में सीख रहा होगा। अचानक बोला, माँ वह लेडीज फिंगर है ना, आसमान की ओर उठी हुई, लेकिन यह बैड मैनर है, भगवान जी पर बड़ों पर तो उंगली उठानी नहीं चाहिए। मैंने मजाक में कहा, तुम्हें कोई दुख होता है तुम मुझ पर उंगली उठाते हो ना, कि तुम्हारे चलते यह हो गया, मुझे पर उतारते हो औरों का गुस्सा। आदमी जिसे बहुत प्यार करे उसे बहुत तंग भी करता है। इस पर वह चुप हो गया। कुछ देर में बोला, भिंडिया भगवान को बहुत प्यार करती हैं क्या, सबका गुस्सा उन पर ही निकालती हैं। लेडीज फिंगर, औरतों को लोग डांटते भी तो हैं कितनी जोर से दहाड़ कर, क्या तुम भी किसी को डांटोगे? नहीं, मैंने तृप्ति की सांस ली। बीज डालते चलिए, कुछ बीज पत्थर पर भी गिरेंगे तो क्या उन्हें चिड़िया चुनमुन चुग लेंगे। शब्द से बड़ा बीज कुछ भी नहीं होता। शब्द जो एहसास से उभरता है, आत्मिक अनुभव से, कहीं ना कहीं तो उगेगा ही। इसी अर्थ में निजी से निजी अनुभूतियाँ सिर्फ निजी नहीं रहती जब उनका राजनीतिक संदर्भन हो जाता है और वे औरों की चेतना के विकास का कारक हो जाती हैं। सिर्फ शब्द नहीं, आंकड़े भी बहुत कुछ कहते हैं। अपने समय की कुछ विडम्बनाएँ उनके ही आशय उजागर करती हैं। 1971 में 14.2% स्त्रियाँ सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यरत थीं। 1991 में यह प्रतिशत 22.3 हो गया। इनमें से 87% कामकाजी महिलाएं प्राइमरी सेक्टर में कार्यरत हैं, 4% सेकेंडरी सेक्टर में और 8% टर्शियरी में। 44.24% खेतीहर मजदूर हैं और 34.57% किसान। 84.7% ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं खेती बाड़ी, डेयरी उद्योग, पशुपालन, मछली पालन, जंगल वापन, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और दूसरे गृह उद्योगों से। उनका मन शहर और शहरी बाबुओं की ओर खींचता है कभी कभी, लेकिन कई तरह के डर उनके मन में कुनमुनाते हैं। एक पंजाबी लोकगीत का भोजपुरी रिमिक्स इधर सुना, उसी के कुछ शब्द कुछ उलट फेर के साथ सामने रखती हूँ। मैं तो नहीं जाना शहरी बाबू संग जी, पंपिलाट है उसके जूते और नाजुक है मेरी कमर। निजीकरण का इधर इतना ज़्यादा शोर है कि किंतु निजी जीवन, स्त्रियों का जीवन अब तक खुशनुमा नहीं हो पाया। तरह तरह की जहालतें उन्हें झेलनी होती हैं, खासकर वंचित श्रेणी की महिलाओं को। श्री खेड़ के गीत का मुखड़ा जरा देखिए, घास खोदते खोदते दिन ढल गया, अभी तक रोटी का कोई अता पता नहीं, माटी ही कोड़ते हुए पहुंची हड्डियां शमशान में, बालिश्त भर के इस पेट के लिए। गजब ढंग से गरीबी का स्त्रीकरण हो गया है। एक सजग स्त्रीवादी सचिन जैन ने बताया, तहरासा बाई मौसम में 250 रुपये का महुआ इकट्ठा कर पाती है, इसके बदले बनिए से उसका उतना ही नमक मिल जाता है। यह उसकी सबसे बड़ी जरूरत है। जब भूख सताती है और कहीं से गेहूं मिल जाता है तो 100 ग्राम आटे में पाव भर पानी और 3 चुटकी नमक मिलाकर वह रबड़ी बनाती है। अगर कभी चावल मिला मजूरी में तो माड़ खुद पीती है, भात बेटे को खिला देती है। जब यहाँ मजदूरी नहीं मिलती, 10 किलोमीटर पैदल चलकर अपने मायके पहुँचती है, अन्नदान लेकर आती है तो चूल्हा जलता है। यह सब तब जब देश के गोदामों में करोड़ों टन अनाज भरा हुआ है। 1995 में संयुक्त राष्ट्र ने जो मानव विकास प्रतिवेदन जारी किया, उसमें महिलाओं के अदृश्य अवचेतन छिपे हुए काम का मौद्रिक मूल्यांकन करके यह बताया गया कि उनकी वार्षिक कीमत 110 खरब अमेरिकी डॉलर की होती है। सीधे शब्दों में कहें तो पूरी अर्थव्यवस्था में वह आधे से भी अधिक का योगदान देती है। अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर नहीं है कि खाना खरीदा ना जा सके, न जमीन इतनी बंजर। भूखा रखना एक राजनीति भी है, घर में और बाहर भी। यदि भरपेट भोजन मिला तो संभव है मन और मस्तिष्क स्वस्थ होकर अपनी सामाजिक स्थिति पर विचार करें, जिसे समाजविद सचिन जैन समता और क्षमता का प्रश्न कहते हैं, वह भी उठ खड़ा हो जाएगा। सरकारी ऋणों के आवंटन में भी खासा लिंग भेद है। कृषि, बागवानी, ट्रैक्टर या इस तरह की ठोस जरूरतों का पूरा 100% पुरुषों के खाते में जाता है। औरतों को सहायता मिलती है अचार, बड़ी, पापड़ या सिलाई कढ़ाई के काम के लिए। सिर्फ मध्य प्रदेश में महिलाओं ने ऐसे 2700 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं, पर एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जहां उन्हें खेत का अधिकार या निर्माण कार्य का ठेका मिला हो। औरतों के लिए सामाजिक सुरक्षा के मायने भी उसके निराश्रित या विकलांग होने तक सीमित हैं, और अगर उसे 150 रुपये प्रतिमाह की पेंशन भी मिलती है तो वह इसकी हकदार नहीं रह जाती। इसी तरह काम के आवंटन में भी भेदभाव होता है। जिस काम में गति है, भ्रमण है, रौनक है, पुरुष के हिस्से आते हैं। उबाऊ, नीरस और कड़ी मेहनत के काम स्त्रियों के सिर आते हैं। खेती के दौरान ही जब मर्द पानी ढोता है ट्रैक्टर या बैलगाड़ी पर, महिला सिर पर 3 मटके रखकर पैदल ही चल पड़ती है। घुटने भर पानी में कमर झुकाकर धान की बुआई और कटाई महिलाएं करती हैं। पुरुष फसल ट्रैक्टर पर लाद कर मंडी में बेच आता है। संसाधनों का मालिकाना हक औरत का भी नहीं होता। संसार के सिर्फ 2% संपत्ति औरतों के नाम है, और काम के घंटे तिगुने। दुनिया के काम का 76.6% वही संभालती है। फिर भी लोग कहते हैं कि औरतें चंट हो गई हैं, स्वार्थी और घर फोड़ू। औरत अपनी टांगे, अपने हाथ, अपना मन सिकोड़ कर बैठे तो धरती ही सिकुड़ जाएगी दोस्तों। और आप कहाँ रहेंगे? काम कागज़ के पैराशूटों में, हवा में? औरत है तो धरती है, पर औरत की खातिर तो ये भी कागज़ का दौर है। पेट रोटी सिखा ली, जेब पैसे सिखा ली, बातें बसीरत सिखा ली, वादे हकीकत सिखा ली, दिल दर्द सिखा ली, दिमाग अक्ल सिखा ली, शहर फरजानों से। इब्ने शाह। अस्मिता आंदोलन और स्त्री, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, विचार विमर्श। विमर्श के साथ एक खास बात यह है कि यह हमारे साथ ही बड़े हुए। जब हम छोटे थे, विचार और विमर्श कल्याण जी, आनंद जी, या शंकर जय किशन, या तबला डुग्गी, या चूल्हा चक्की, या प्रेमचंद की कहानी के बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब की तरह जहाँ तहाँ प्रकट होते थे, साथ साथ सलाह मशवरे की तरह विचार विमर्श का प्रयोग होता था। रुको जरा, विचार विमर्श कर ले, फिर बताते हैं कि करना क्या है। एक आपसदारी पलती थी इनके बीच। विमर्श का बड़ा भाई विचार था। जहाँ निकलता था नन्हे विमर्श को गोद में टांगे, या एक विमर्श को कनगुरिया उंगली पकड़ाए हुए। पिछले 20 वर्षों में समझिए कि दक्षिण अफ्रीका के नेगीच्यूड आंदोलन के समय से नदीम श्रवण की तरह विचार चर्चा की जोड़ी टूटी हुई दिखती है। आधुनिक विमर्शों पर मुख्य अभियोग यह है कि ये प्रत्याख्यान मूलक हैं, पलट कर जवाब देते हैं। विचार या मेटानेरेटिक्स या वैचारिक आग्रहों द्वारा दूसरे बने बनाए मोनोलिथ खांचों से भी अपना पल्ला झाड़ चुके हैं, फ्रेम के बाहर निकल आए हैं। ये श्वेत अश्वेत, हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, सब द्विपद एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। समन्वयवादी दर्शन इन्हें एक फटा हुआ तंबू लगता है। इस फटे हुए तंबू से अलग अलग कई छतरियाँ या बरसातियाँ बन सकती हैं। मोटे तौर पर यही कहते नजर आते हैं ये विमर्श। यह एक तरह का आपातकाल है, इसके अपने संकट और अपनी उदासियां हैं। मैं यहाँ छतरी में खड़ा हूँ और मेरा अकेलापन वहाँ बारिश में भीग रहा है। तूफान में छतरियाँ काम आती हैं, तंबू उखड़ उखड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तंबू बनेंगे ही नहीं। जिंदगी तो कोई एक छतरी के नीचे गुजर नहीं सकता। बारिश तूफान में दोनों हाथों से अस्मिता की छतरी ताने खड़ा विमर्श सड़क के उस पार होने की कोशिश तो कर ही रहा है, कोशिश तो कर ही रहा है छतरी का घेरा बड़ा करने का। अलगाववादी नहीं है विमर्श और अस्मिता आंदोलन। अब लो नसानी, अब न नसई हो। मुझे याद है, मैं स्कूल में पढ़ती थी, जयप्रकाश आंदोलन अपने उठान पर था। डायलिसिस पर थे जयप्रकाश नारायण। मुसहरी ब्लॉक में पहला या दूसरा उनका भाषण हुआ था और तीसरा हमारे शहर मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान में, जब रामचरितमानस की पंक्ति कुछ इस तरह उद्धृत की थी कि उन्होंने की हमारी हड्डियों में विस्फोट की चिंगारियां तिनक उठी थी। अध्यात्म का ऐसा सुघड़ प्रयोग राजनीतिक प्रसंग में व्यवस्था विरोध के लिए, आध्यात्मिक कश्मकश और दास्य भक्ति की एक करुण प्रसंग का ऐसा सतेज विनियोग अपने आप में विलक्षण है। अब लो नसानी, अब न नसी हो। जब जागो तभी सवेरा, और सवेरा एक बड़ा रूपक है। सवेरा जब होता है, प्रकाश सबके जीवन में फैलता है। प्रकाश की वितरण व्यवस्था हमारी आर्थिक प्रणालियों की वितरण व्यवस्था से एकांगी तो नहीं है। आधुनिक विमर्शों पर दूसरा अभियोग यह है कि ये दहशत और नफरत फैलाने वाले घर पोड़ विमर्श है। प्रेम और अध्यात्म दोनों का कबाड़ा किया है इन्होंने। स्त्री विमर्श ने घरों के सुख शांति भंग की है। दलित विमर्श ने मोहल्लों का भाईचारा खत्म किया है। जातीयता भड़काई है और दंगे भड़काए हैं। आतंकवाद को पनाह दी है अल्पसंख्यक विमर्श ने। सब एक साथ बोल पड़े हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। ऐसे थोड़े ही चलता है कार्यक्रम, यह तो अनार्की है। ये सब जो तर्क है, सत्ता को अनुकूल पड़ने वाले तर्क हैं। सत्ता जो संवाद में विश्वास नहीं करती, एक धरातल पर बैठा कर कंधे पर हाथ रखकर बतियाने का ढोंग तो करती है, मुंड तो हिलाती है प्रतिपक्ष की दलील नहीं सुनकर, पर उनके लिए स्पेस नहीं बनाते। विश्वास करती है तो एक पक्षी आदेशों के गर्जन तर्जन में या फिर आकाशवाणियों में, जो धरती की आवाज़ों को कोई जगह ही नहीं देती। बच्चों को सोते समय मैं एक गाना सुनाती हूँ जो जौहर महमूद इन गोवा फिल्म में जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया था। यह फिल्म मैंने बचपन में देखी थी, प्रसंग मुझे साफ साफ याद नहीं है, पहली दूसरी में ही पढ़ती होंगी तब। गोवा के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी थी शायद। मुझे सिर्फ दृश्य याद है कि एक दुबला पतला आदमी जानी वाकर खचाखच भरे ट्रेन में खड़ा है और उसके ठीक सामने सीट पर एक मोटूमल पसरे पड़े हैं। मोटूमल को पतलू पांडे जो कहते हैं, सारे विमर्श सत्ताधीशों को वही कहते नजर आते हैं। हास्य व्यंग क्रोध अमर्श ऊब खीज सबक और खैनी चूना तलहत्ती पर मलते हुए, अरे मोटे लाला तूने किया है कैसा छल, टिकट तेरा सिंगल मगर तू डबल, खिसक जरा प्यारे सरक जरा प्यारे, ऐसी बॉडी में दिल भी बड़ा चाहिए, एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी दिल में जगह चाहिए, बैठ जाऊं। अब यह सारे व्यंग विनोद की पूंछ बैठ जाऊं है, प्रेम और अध्यात्म दोनों के संस्थायन की अपनी विकट समस्याएं हैं, जो तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के दर्शन के आलोक में हुई मुक्त बातचीत के जरिए ही सुलझ सकती हैं। विमर्शात्मक लेखन उसी बातचीत की गोलमेज, बड़े ही है हम सब उस गोलमेज की। अध्यात्म की नैतिक चेतना का संस्थायन धर्म जब होता है, जगह जगह दंगे फूट पड़ते हैं, तरह तरह लहर के और क्रूसेड प्रतियोगिता होने लगती है, प्रेम जैसे उदात्त भाव का संस्थायन भी विवाह में होता है तो समस्याएं आती हैं। समस्या दरअसल प्रेम और भक्ति भी नहीं, ये तो पर दुख कातरता अहम विसर्जन आदि बड़े भावों के संवाहक हैं। समस्याएं हैं इनके संस्थायन में, जो अंतरंग संबंधों को भी ताकत के उलझे खेल में तब्दील कर देता है, एक पक्ष को भेड़िया दूसरे को भीड़ बना देता है, और इस क्रम में नुकसान दोनों का होता है, क्योंकि मानवीय गरिमा से दोनों नीचे गिरते हैं। स्त्रीवाद के आग्रह से स्त्रियों का स्नेह तत्व तो मर गया हो यह मानना एक सिरे से गलत है। पहले की स्त्रियां संबंध निभाती थी तो आर्थिक परतंत्रता जन्य व्यवस्था उनके साथ रहती थी, पति आदि से विरोध भी हो तो चुप सहना है, निभाना है, इसके सिवा उपाय ही क्या है। अब आर्थिक स्वतंत्रता है तो उपाय बहुतेरे हैं। स्वास्थ्य सजगता और बच्चे कम होने के कारण भी स्त्रियों का दैहिक आकर्षण अधिक दिनों तक बरकरार रहता है, और पढ़ी लिखी होने के कारण आत्मिक बौद्धिक नैतिक परिष्कार भी उनमें आया ही है। पति अनेक न भी हों तो अक्सर उनके प्रशंसक अनेक होते हैं। इसके बावजूद स्त्रियां जहां तक हो पाता है घर बाहर दोनों निभाती हैं, पर भीतर भीतर कहीं यह बात भी खुदर बुदुर सी मचाती रहती है कि बॉलीवुड सिनेमा की तरह विवाह भी ज्यादातर स्त्रियों के जीवन की संभावनाओं का द एंड होता है। विवाह के पहले दिल दहल जाता है हर लड़की का, अपने पूरे जीवन का वादा एक बार कर देने की किसी की हिम्मत जल्दी नहीं होती। एकांत में सोचती है, इस साल हो सकता है मैं विवाहित रहना चाहूँ, लेकिन अगले साल। अपनी छात्राओं से मैं अक्सर गपशप करती रहती हूँ, और एक ने तो मुझे कुछ दिन पहले यह कहा था कि साल दो साल की विवाह श्रृंखलाएँ या मैत्री करार बहुत बुरा है क्या दीदी। ऐसा नहीं कि विवाह नामक संस्था में अनास्था व्यक्त कर रही हूँ, बल्कि दृष्टिकोण उसके प्रति मेरे विनम्र सम्मान का प्रतिफल है और सिविल राइट्स मूवमेंट की सीख का। चीज़ों और पदों को अस्थाई समझो और उनसे तब तक जुड़ो जब तक तुम्हें लगे कि तुम इन्हें अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम दे रहे हो। कम से कम स्त्री विमर्श पर अलगाववाद का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता। स्त्री समाज का एक ऐसा समाज है जो वर्ग नस्ल राष्ट्र आदि संकुचित सीमाओं के पार जाता है, और जहाँ कहीं दमन है, चाहे जिस वर्ग जिस नस्ल जिस आय जिस जाति की स्त्री त्रस्त है उसको अंकवार लेता है। बूढ़े बच्चे अपंग विस्थापित और अल्पसंख्यक भी मुख्यतः स्त्री ही हैं ये यह मानता है। लंगड़ो चले मुख पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई की पहली ईश निरपेक्ष व्याख्या है यह। अपने ढंग का पहला अहिंसात्मक आंदोलन इसने दिलों में थोड़ी जगह तो बनाई ही है। जागो मोहन प्यारे भाव में राग भैरवी भी सुनाते हुए औरतें हमेशा जागती रही हैं, जगाने का काम दुरूह तो होता है। नींद के गर्म गुदगुदे सपने में माँ भी बाहर खींचती है तो उसको 10 बातें सुननी होती है। कोई बात नहीं, बहुत सुना है, कुछ और सुन लेंगे, पर आपको अलसाया हाथ बढ़ाकर अलार्म का स्विच बंद नहीं करने देंगे। घड़ी आपकी पहुंच से दूर चली गई है, अलार्म बज रहा है, उठिए नहीं तो बस छूट जाएगी। हरिओर से शब्द उधार लेकर कहूँ क्या, उठो तात अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। स्वाभिमान मिशन। तो पश्चिम में डिस्कोर्स भले ही गिरजाघर से लबादे पहनकर अकेला निकला हो और अकादमिक जगत के विशिष्ट ओहदों पर विराज गया हो, हमारे यहाँ विचार विमर्श की जोड़ी शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, नदीम श्रवण या सीता गीता, राम और श्याम, जैकल हाइड की समस्त मलंग जोड़ी, मस्त मलंग जोड़ी रही है, जैसे पत्थर पानी बर बिछौना, जैसे विचार विमर्श, इसे विवाहित स्त्री पुरुष का जोड़ा भी समझ सकते हैं। विचार अंदर खदकते हैं, विमर्श बाहर होता है। विमर्श यानी सलाह मशवरा, सार्वजनिक स्पेस में उस नए विचार का प्रवेश जो अब तक भीतर भीतर उमड़ा। समय के साथ साथ यह सिद्ध होता गया कि भूख और अपमान दुनिया के दो मूल दुख हैं। लात पेट पर पड़े या पीठ पर, चोट बराबर लगती है। रोटी भी फेंक कर दी जाए तो गले नहीं उतरती। वर्ग तो बड़ा यथार्थ है ही, पर जाति, लिंग, नस्ल और धर्म भी शोषण के भयावह हथियार रहे हैं, और अपमान की जो राजनीति ये लगातार खेलते रहे हैं, उससे उपजी दोयम दर्जे की नागरिकता का दर्द स्त्रियां, अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित और अन्य पिछड़ी जातियां ही नहीं, पिछड़े प्रदेशों के विस्थापित शरणार्थी, सिर्फ मातृभाषा बोल पाने वाले लोग और प्रायः सब वृद्ध, अपंग, बेरोजगार, मजदूर और किसान झेल रहे हैं। पिछले कुछ दशकों से समकालीन विमर्श उनके ही अनुभव और अनुभूतियां लोक मनीषा में दर्ज कर रहा है। एक शब्द में कहें तो यह एक तरह का स्वाभिमान मिशन है, जिसके तहत भाषा विमर्श भी शामिल है, क्योंकि भाषा से चेतना का ना भी नाल वाला रिश्ता है। कुछ लोग विमर्श के नाम से चिढ़ते हैं, वे समझते हैं कि साहित्य की गंगा इनसे दूषित हो रही है। इससे बड़ी भ्रांति कोई हो ही नहीं सकती, विमर्श साझा चूल्हा है और इनका लक्ष्य है संवाद। संवाद तब तक होते हैं जब तक परिवर्तन और परिष्कार की कोई उम्मीद हो, वरना अबोला हो जाता है या मारकाट शुरू हो जाती है। विमर्श मारकाट नहीं मचाते, प्रजातंत्र के अच्छे नागरिकों की तरह मानवाधिकार के मुद्दे उठाते हैं, तार्किक ढंग से उठाते हैं और सहमति अर्जित करते हैं ताकि प्रदूषण घटे। विमर्श क्या है? स्वानुभूत विचार, विचार जो आप कहीं से उठाकर नहीं लाए, खुद अर्जित किए हैं, खून, पसीना और आंसू बहाकर। आंसू से आंखें साफ हो जाती हैं, खून पसीने से रोम कूप खुल जाते हैं, रोम रोम में आंखें विकसित हो जाती हैं। स्वयं का माया हुआ ज्ञान या विचार मामूली ज्ञान या विचार नहीं होता, वह होता है विवेक या संज्ञान, और विवेक बढ़ता नहीं, जोड़ता है। ईसा मसीह कहकर चुप हो लिए कि हे ईश्वर, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फिर विमर्शों ने जिम्मा उठाया कि यदि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं तो उन्हें यह जानना चाहिए, हम उनको आईना दिखाएंगे। हर घाव एक आईने की तरह दिखा देने की परंपरा तब से शुरू हो गई। एक तरह से देखें तो बहिरो सुने मोक पोनी बोले, रंग चले सिर छत्र धराई का ही महावाक्य नए सिरे से उचारा गया, पर यहाँ कृपा या दुहाई से परहेज था। सहज मानवाधिकार कृपा भाव से क्यों दिए जाएं, मुद्दा तो यह था। अब लो नसाने, अब न नसई हो जैसे महाकाव्य भी एक राजनीतिक अर्थदीप्ति पा गए। स्वानुभूति सहानुभूति भी विचार विमर्श की तरह का एक सुंदर जोड़ा है। स्वानुभूति सहानुभूति का महत्व कम करके नहीं आंकती, पर काया प्रवेश का महत्व समझती है। पर प्रवेश प्रवेश ही होता है, बाहर से आने वाला भीतर का हाल चाल जानते जानते ही जानेगा। कल्पना और संवेदना बड़े भाव तो है ही, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। एक बड़ा सच यदि यह है तो दूसरा बड़ा सच यह भी है कि जाके पाँव न फटी विवाई, सोका जाने पीर पराई। ठीक है, इसमें पीड़ा की वह सघनता व इंटेंसिटी नहीं होगी, पर पीड़ा से सर्वथा अपरिचित भी भला कौन होगा। देह धरे को दंड है सब काहू को कोई।